ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 14। सर्वेन्द्रिया गुणाद्रष्ट्रे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाययोक्ताय सदा भासाय ते नमः। शब्दार्थ सर्वेन्द्रिय गुण दृष्ट्रे, सभी इंद्रिय विषयों के दृष्टा में, सर्व प्रत्यय हेतवे सभी संशय के समाधान, और जिनके बिना सभी असमर्थताएं तथा सारे संदेह हल नहीं किया जा सकते, असता असत्य या भ्रम प्रकट होने से, छाया समानता के कारण उक्ताय कहलाया, सत अभासाय सत्य का प्रतिबिंब के लिए ते नमः आपको नमस्कार करता हूं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे भगवान, आप समस्त इंद्रिय विषयों की दृष्टा है, आपकी कृपा के बिना संदेहों की समस्या के हल होने की कोई संभावना नहीं है। यह भौतिक जगत आपके अनुरूप छाया के समान है। निसंदेह मनुष्य इस भौतिक जगत को सत्य मानता है, क्योंकि इससे आपकी अस्तित्व की झलक मिलती है। तात्पर्य इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार होगा, इंद्रिय कर्म के विषय वास्तव में आपके द्वारा देखे जाते हैं, आपके निर्देशन के बिना जीव एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जैसी कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। आप हरेक के हृदय में स्थित है और आपसे ही स्मृति तथा विस्मृति आती है। छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा, माया के वशीभूत जीव इस भौतिक जगत का आनंद लूटना चाहते हैं, किंतु जब तक आप आदेश नहीं देते तथा उन्हें स्मरण नहीं दिलाते, तब तक वह अपने जीवन के छायाव्रत उद्देश्य का अनुसरण करने में प्रगति नहीं कर सकता। बद्ध जीव जन्म जन्मांतर गलत लक्ष्य की ओर प्रगति करता जाता है, और उसे इस लक्ष्य का स्मरण आप द्वारा ही दिला दिया जाता है। एक जन्म में बद्ध जीव किसी एक लक्ष्य की ओर प्रगति करना चाहता है, किंतु शरीर बदलने पर वह हर बात भूल जाता है। फिर भी हे प्रभु, क्योंकि आप वह इस जगत का कुछ न कुछ भोग करना चाहता था, अतएव आप उसे उसके अगले जन्म में इसका स्मरण दिलाते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि बद्ध जी आपको भूलना चाहता है, अतएव आप कृपा पूर्वक जन्म जन्मांतर उसे ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जिससे वह आपको सतत भूल सकता है। अतएव आप बद्ध जीव के नित्य निर्देशक हैं, क्योंकि आप हर वस्तु के मूल कारण है, अतएव हर वस्तु सत्य प्रतीत होती है। चरम सत्य तो आप ही हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। सर्व प्रत्यय हेतवे इस शब्द की व्याख्या श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने की है। वे कहते हैं कि फल या कार्य से कारण की झलक मिल जाती है। उदाहरणार्थ मिट्टी का पात्र कुम्हार के कार्य का फल है, अतः पात्र को देखकर कुम्हार के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत से मिलता जुलता है और कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अंदाजा लगा सकता है कि यह किस प्रकार कार्य कर रहा है। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, मया धक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, भौतिक जगत की गतिविधियां से ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पीछे भगवान की अध्यक्षता कार्य कर रही है। ओम अज्ञानमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोहिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादां सहगणलिता श्रीविशाखानितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कुछ दिन से श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद अंतर्गत गजेंद्र उपाख्यान श्रवण कर रहे हैं। गजेंद्र उपाख्यान श्रीमद्भागवत महापुराण में एक महत्वपूर्ण उपाख्यान है, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये भौतिक संसार में जितने देहधारी प्राणी हैं, समस्त देहधारी प्राणी से साथ ही सबसे बड़े शरीर वाले प्राणी गज होते हैं, हाथी नहीं। हाथी का शरीर सबसे बड़ा होता है, उससे बड़े शरीर वाले होते हैं क्या? शायद ही कम होते हैं, प्राय वही सबसे बड़े शरीर वाले माने जाते हैं। और यहां जो गजेंद्र की बात कहा जाता है, वो तो वर्णन आता है कि इतने बलशाली इतने विशाल शरीर वाले था कि चलने से धरती टलमला रहा था, इतने विशाल बलवान शरीर वाले था। वो जब जंगल में निकल रहा था तो जंगल में सबसे बड़े बड़े सिंह बाघ भी भाग जाते थे उसके इशारा से। उनके सैकड़ों हजारों हथनी संगिनी थे, पत्नी थे, उनको साथ लेकर के अकेला सम्राट की तरह जंगल में घूमता था। महाबली कोई उसके समान नजर नहीं आता था। अब इतने बलशाली प्रतिपत्तिशाली पूरे जंगल में सम्राट, अपने पूरे परिकर पत्नियां और संबंधी को लेकर के उन्होंने एक बार सरोवर में प्रवेश किया। पानी पीना, जल के लिए करना, वाटर पास टाइम ये सब करने के लिए गया। अब गया लेकिन वो तो समझ रहा था धरती पर उनके समान बलशाली कोई है ही नहीं, लेकिन भगवान की विचित्र सृष्टि है। कोई भी कितने बड़ा क्यों ना हो, उनके बराबरी वो बना के रखे हैं। हाँ, वो नहीं कह सकता कि मैं ही हूं। अब पानी के अंदर, धरती में भी नहीं, पानी के अंदर दिख भी नहीं पाया, उसको पैर पकड़ लिया गया। वो क्रोकोडाइल ने, मगरमच्छ ने उसको पैर पकड़ करके खींचा। तो उन्होंने तो पहले क्या ये ऐसे ठोकर मार के उठा देना चाहता था, मैं जैसे बड़वा नहीं क्या, हटो उसको। इस प्रकार तुच्छ भाव से उनको डील करना चाहता था, उसे व्यवहार कर रहा था, लेकिन देखा कि तुच्छ नहीं, थोड़ा बड़ा है, डोज ज्यादा चाहिए उसके लिए। डोज बढ़ाते गया बढ़ाते गया, देखा कि अब तो भारी पड़ रहा है। तो उनके जो परिकर थे, उनके संगीगण थे, पत्नियां थे, उनके बाल बच्चे और सब, सारे उनको मदद करने के लिए कैसे मदद करेंगे, इतने विशाल शरीर स्वयं है। जंगल से लाकर लकड़ी वकड़ी डाल करके कोई ब्रिज बनाए होंगे, कोई किए होंगे, उसको पीछे पूछ पकड़ कर खींचे होंगे, कुछ किए होंगे, लेकिन कर कर करके थक गए, कुछ नहीं हुआ। और उनका उनके साथ युद्ध चालू रहा, ये जल जीव मगरमच्छ के साथ, उस हाथी का। और आप किसी के साथ झगड़ा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो तो हो साल, दो साल, पांच साल, दस साल, बीस साल तक, उससे ज्यादा कोई झगड़ा करते हो, केस भी कोई हो, पचास सौ साल तक जाता है, उसके बाद जज भी मर जाता है, वो वादी प्रतिवादी मर जाते हैं, खत्म हो जाता है, फाइल खत्म। लेकिन ये हाथी और मगरमच्छ का झगड़ा 10,000 साल तक चला, कंटिन्यूअस दिन रात, वो पैर को मुंह में लेकर खींचते चला जा रहा है पानी के अंदर, वो उसको खींच खींच कर ऊपर तक ले जा रहा है, वो उसको खींच खींच कर पानी में ले जा रहा है, वो उसको खींच खींच कर ऊपर ला जा रहा है। ऐसे घिसा पीटा खींचाता ना 10,000 साल तक, कितने बल था, नहीं खा रहा था, नहीं सो रहा था, नहीं पी रहा था, पानी के अंदर क्या खाए, उनके लिए कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं था, कोई उनके असिस्टेंट नहीं थे, उनके हेल्प नहीं, कोई नहीं था, अकेला। इतने बल था उसके अंदर, उस बल के अंदर गर्भ क्यों नहीं होगा, हमारे अंदर ही 5 किलो उठाने के लिए बल है, हमने अपने आप को हीरो समझ रहे हैं। वो उसका अंदर जो इतनी बलशाली था, जो 10,000 साल तक पानी के अंदर खाए पिए सोए बिना लड़ सकता है, होना चाहिए उसके बल के घमंड तो, कोई होना चाहिए। तो इतने बल था, लड़ करके 10,000 साल के बाद भी आप देखा कि घटते गया, घटते घटते इसी स्थिति आया कि अब उनका सारे गर्व, उनका अभिमान, मान, घमंड सब चूर चूर डाउन होते 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 मीटर डाउन, बिल्कुल प्लेन पर आ गया, जीरो पर आ गया, बैलेंस नील, शरीर सिकुड़ चुका है। अब उनका जो प्रतिपत्ति, उनका जो मद सब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब याद आया भगवान के, अभी तो याद नहीं आता सदा सत ना, हाँ कुछ है। जब आपने बल पर, आपने पोस्ट पर, आपने पोजीशन पर, आपने संबंधियों पर, आपने कुछ, अपना कुछ भी है उसके ऊपर भरोसा रहे, तब भगवान तो दूर में रहेंगे, उनकी आदि नहीं करेंगे। अब सारे कनेक्शन छूट गया, सारे आशा से विफल हो गया, निराशा हो गया, हताशा हो गया, कोई सहारा नहीं, ऐसी निस्सहाय स्थिति में वो हरि याद आते, वो हाथी भी याद कर लिया, आदमी क्यों नहीं याद करेगा, है ना। हाथी याद किया, उसको कोई पढ़ा दिखा था थोड़ी, कोई मंदिर में आया था थोड़ी, जंगल में कुछ नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि उसके पहले जन्म में, देखिए विपदे के ऐसा स्थिति है, आपको इसी जमाने जन्म के नहीं, पहले जन्म का भी अच्छी कर्म की याद दिला सकता है, तो विपद कितना अच्छा है ना, विपत्ति इतने अच्छा है कि इसी जन्म के छोड़ो, पहले जन्म के किया हुआ अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं, अच्छा कर्म, भगवत भजन याद वो दिला देता है, तुरंत याद आ जाता है महाविपत्ति के कारण, मृत्यु संकट के कारण वो भी याद आ गया उसको। अब पूरा श्लोक याद नहीं आया, लेकिन याद तो आ गया। तो उन्होंने इस मुमूर्ष स्थिति में उस श्लोक को गान करने लगा। अब वो तो मर रहा था, खींच रहा था पानी में, मरते समय में और श्लोक गाने चालू किया, लेकिन पूरा ठीक, लेकिन इतने तो कुछ तो याद आया उसका, उसको याद करके बिल्कुल भगवत स्मरण की स्तुति किया। जो भगवान को स्तुति किया मरने के संकट घड़ी में, यह स्तुति ये है, ये जो दिया गया गजेंद्र ने अपनी पानी के अंदर डूबकर मरने समय में, मरते मरते कई हजारों साल तक लड़ते लड़ते हताश सब प्रकार के आशा छोड़ करके मरते दम से पिछले जन्म की जो श्लोक याद किया था, जो भगवान की पूजा किया था, उसकी याद आ गया। अब उसको याद करके इसी भगवान को इसी टूटे फूटे स्तुति के द्वारा उनको स्मरण ध्यान करता है, गजेंद्र स्तुति इसको कहते हैं। पहले जन्म का स्तुति इस जन्म को सिखा, इंद्रधनु था पहले जन्म में, तब स्तुति याद करता है। तो स्तुति में प्राय जागरण में देखते हैं हम गजेंद्र स्तुति में, यह नाम परक स्तुति नहीं है, भगवान का सीधा सीधा नाम नहीं है किसी श्लोक में, यह सब गुण क्रिया परक है, उसमें महिमा है। लेकिन एक काम तो हर एक श्लोक में नमः ते उनको प्रणाम तो जरूर करता है कि प्रभु अब ते मर गया, प्रणाम भर कर सकता हूं, अब क्या कर सकते, इतनी विशाल शरीर इतने महाबली था लेकिन अब सब गया, अब केवल आपको प्रणाम भर कर सकता हूं, बाकी आप ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ये क्या कर प्रणाम भर करता। तो इस श्लोक में प्रणाम करके वो कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुण दृष्टि कि हे प्रभु ते नमः, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप इस दुनिया को किया, इस दुनिया के अंदर जितने जीव जितने प्राणी हैं, इस प्राणियों के इंद्रिय के विषय को भी गुण को भी आप देख लेते, आप देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले नहीं, आप ही दृष्टा है, सर्व इंद्रिय गुण दृष्टा, इंद्रिय के विषय को इंद्रिय के गुण को सब आप देखते हैं, इसलिए आपका एक नाम है ऋषिकेश। ऋषि का मतलब इंद्रियां, इस मतलब मालिक कंट्रोलर, तो आप समस्त इंद्रियों का नियामक है। इस चराचर जगत में जितने प्राणी हैं उनके जो इंद्रियां है, हां सोचते हैं इंद्रियां अपने बल पर चलता है, लेकिन यह हमारी मूर्खता है। इस इंद्रिया चलता है और दूसरे प्रकार से, जैसे कोई पढ़े लिखे लड़के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है वो जानते हैं, हम एक स्विच ऑन किए लाइट चल गया, तो बोला कैसे चला लाइट, ना स्विच ऑन किया लाइट चला, ये तो हमारे समझ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है क्या समझेगा, ये तो तू तो केवल स्विच ऑन किया, उसी के अंदर वो तार क्या होता है उसको जानते हो, वो कनेक्ट हुआ इससे, उससे वो तार से फिर जाता है जाकर के वो फिलामेंट कनेक्ट किया, उससे फिर वो आया, फिर वो आवाज, फिर जाकर इतने सारे प्रोसेस के बाद जाकर के जलता, हम देखते हैं किसमें ठीक। इसी प्रकार हम हाथ उठाकर किताब को पकड़ना चाहते हैं, हाथ में किताब लेना चाहते हैं, मैं चाहता हूं किताब को पकड़ने के लिए, ये मेरी इच्छा हुआ, मेरे ये कर्मेंद्रिय हाथ चला, मैं सोचता हूं ये मेरी डिजायर है, मैं हाथ उठाया पकड़ा मेरी इच्छा है, लेकिन ये मेरी महामूर्खता है, मैं इच्छा भर कर सकता हूं लेकिन हाथ उठाने का मेरा क्षमता शक्ति नहीं है। अब हाथ कैसे उठता है ऐसा हमको समझ में नहीं आता, स्विच ऑन कर लाइट जलता है इतनी समझ, तो इसी का जो प्रोसीज्योर है मैकेनिज्म है, हम इच्छा भर कर सकते हैं, मैं हाथ उठाकर एक किताब को पकड़ना चाहता हूं तो मेरे इच्छा ये एप्लीकेशन जाएगा ये हस्त इंद्रिय के पास, हाथ के पास, हाथ का जो कंट्रोलर है एक अधिदेवता है, ये हस्त जो कर्मेंद्रिय है उसका अधिदेवता है इंद्र, इंद्र के पास एप्लीकेशन जाएगा सीधा, उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, बोला सर देखिए उन्होंने मेरा हाथ यूज करना चाहते हैं, मुझे उठाकर किताब पकड़ना चाहते हैं। तो इंद्र ने देखा क्या कि एप्लीकेशन आया तो क्या करेगा, तो उन्होंने बोला ठीक मैं करूं, मैं भी सर से सैंक्शन करा लूं, तो उन्होंने उसको भेजेगा विष्णु के पास जो सारे इंद्रियों के मालिक है, हृदय डिपार्टमेंट, उनको भेजेगा सारे एप्लीकेशन आया है उठा मैं करूं एक्शन लू ना नहीं, तो वो ओके करेंगे, ये फॉरवर्ड होकर एप्लीकेशन आएगा इंद्र के पास, इंद्र पहले भेज देगा ओके गो हेड, तब हाथ उठेगा पकड़ेगा। इतने सारे कार्यवाही के बाद होता कुछ भी, आंख खोलकर देखना चाहते हैं वो भी सेम प्रोसीज्योर है, उसका अधिदेवता है सूर्य भगवान है, आप केवल चाहने से देखने देख नहीं सकते, आप चाह भर सकते हैं, वो उनका पास जाएगा, वो उनका पास जाएगा, उनसे जाएगा, उनसे सैंक्शन होकर आएगा, तब जाकर ये आंख खुलकर देख सकते हैं। हरेक इंद्रिया का क्रिया मुद्रा नियमन कंट्रोलिंग उनके द्वारा किया जाता है, उनके नीचे भी कई अधिकारी है, उनके जरिया से होता है। और हमको पता नहीं, बुद्धू हम बोलते हम करते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, हम मोटे छोटे दो तो तगड़ा हाथ है, बेचारे चल नहीं सकता, लकवा मार गया। अरे तेरा हाथ है तुम उठा, नहीं जी चलेगा नहीं होगा। कोई भी इंद्रिय केवल कर्म इंद्रिय थे, ज्ञान इंद्रिय भी। हम सोचते हैं कि मेरा मुंह है धड़ाधड़ बोलता रहता हूं मैंने, ये भी एक मेरी महामूर्खता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसका मुंह है जीवा है लेकिन बोल नहीं सकते, है ना, बोल नहीं सकते। तो आप सोचते हैं कि आप बोलने वाले, हम सुनने वाले हैं, कुछ नहीं करते, कान तो होल ठिपी भी नहीं लगते, सुनते ही रहते हैं, लेकिन वो भी हमारा मूर्खता है। कान होते हुए बहुत लोगों का भी हो नहीं सुन सकते। तो इस सब से क्या पता चलता है, हाथ है आंख है कान है लेकिन होकर भी नहीं हो पाता है, तो इससे हम क्या समझते हैं। कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति ये तो समझ सकता कि भाई ये सब होने से कुछ नहीं, उसके पीछे कुछ और मैकेनिज्म है, कुछ तो चलाने वाले कोई और है, उनके इच्छा पर काम करता है, केवल वस्तु होने से इंद्रिय होने से काम नहीं होता। इसी को देख करके ये सर्व इंद्रिय गुणाभास सर्व प्रत्यय हेतवे, इसलिए सर्व प्रत्यय हेतवे का अर्थ ये कहते हैं कि जब इसी को आप देखते हैं, देख करके अंदाजा नहीं लगा सकते उसके पीछे क्या कारण है। चक्रवर्ती पात कहते हैं जैसे कोई मिट्टी के पात्र है, मिट्टी के घड़ा को देख करके समझ लेंगे कोई कुम्हार तो जरूर होगा, नहीं तो मिट्टी घड़ा के साथ ना थोड़ी बन गया, कोई बनाने वाला तो होगा। बनाने वाला लेकर के मिट्टी को पानी को चक्का में रख करके डिजाइन करके लेकर के जला करके पका करके दिया तभी तो आया। जब कोई मिट्टी के घड़ा का एग्जिस्टेंस है तो ये बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेगा कि निश्चित कोई कुम्हार होगा, पट्टर है निश्चित, यही उसका कार्य है तो कारण अवश्य होगा। हम नहीं देखे पहचान नहीं, कुम्हार पड़ा गए नहीं, उसका मतलब नहीं क्योंकि है ही नहीं, आपने इसमें से आ गया घड़ा ना। तो इसलिए जगत की संपूर्ण विचित्रता को देखो, क्या गजब है उसमें, उसको देख करके कौन ऐसे मूढ़ व्यक्ति होगा इन्हें समझ सकता कि उसके पीछे कोई हो। मैं एक छोटी सी नमूना में बताता हूं आपको। अब ये देखिए गुलाब के फूल है, कितने सुंदर गुलाब के फूल है, कई पेटाल से उसमें बढ़िया सा गाढ़ लाल कलर के पेटाल है। तो ऐसे गुलाब का फूल अभी तक हमारा हाईटेक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में कोई साइंटिस्ट लैबोरेटरी में ऐसा बना देगा फ्रेश रोज बना सकते हैं, बहुत कोशिश करके प्लास्टिक का बना सकते हैं, है ना, नहीं कचड़ा से उठा करके सारे ऐसा बना सकते हैं। एक रात में मिलियंस एंड ट्रिलियंस गुलाब खिल जाता है, सुंदर सुंदर लाल पीले नीले सफेद उसके अंदर खुशबू भर करके, कैसे उसको देखकर क्या हम हर वक्त नहीं समझ पाते हैं कि कोई उसके पीछे है, ये तो कैसे हो जाता है। हम एक छोटा सा गार डालने के लिए चक लाते हैं, वो करते हैं उसे करते हैं, वो इतने बढ़िया सा बन गया सेंटर्ड दे के फ्रेश, वो कैसे बन गया अपने आप, नहीं कोई विशेष कला का अपने एक्सपर्टिस हैंड के द्वारा ये सब कर रहा है। वो कैसे कर रहा है हमारे मूड दिमाग भले ना समझे लेकिन करता तो कोई है, नियामक कोई है, इसको देख करके समझा दो। सर्व प्रत्यय हेतवे, कोई संशय नहीं रहना चाहिए, नो डाउट, कैसे हो रहा है ना, प्रभु है उसके वजह से हो रहा है, और नहीं तो हो नहीं सकता ना। भगवान तो यहां तक कहते तू पानी पीता है, पानी के अंदर रस भी मैं हूं, हम तो पानी के अंदर रस रस कोई होता, पानी के अंदर हम कभी चीनी डालते हैं कभी नमक डालते हैं रस करने के लिए, बोलते नहीं पानी का अपने आप रस है वो भी मैं हूं, और तू चीनी नमक डालते उसके अंदर जो नमकीनपन चीनी मीठापन है वो भी मैं हूं। अब भगवान खोल करके सारे बोलने के बाद भी हम उनको नहीं मानेंगे, तो इसलिए सर्व प्रत्यय हेतवे किसी प्रकार की डाउट, किसी प्रकार के संदेह, सारे संदेह के समस्त समस्या के मोचन एकमात्र भगवत ज्ञान में हो जाएगा। इसलिए भगवान खोल करके गीता में अर्जुन को बोलते, अर्जुन ऐसे के ज्ञान में तुझे बताना चाहता हूं, तत् सुनो। जिसी को जानने के बाद फिर दुनिया में तेरे लिए जानने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। जस्मिन विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातुं भवन्ति, जिसको जानने से सब कुछ सर्वज्ञ हो जाएगा। आप सब सर्वज्ञ बनना चाहते हैं? बहुत जल्दी हो, 25 साल तक डिग्री करना नहीं पड़ेगा, इन ए मिनट सर्वज्ञ हो जाएंगे। बढ़िया फॉर्मूला बताओ तो क्या है? कुछ नहीं, केवल भगवान को जान लो, ये सर्व कारण कारण बस। हाँ कोई बस सर संशय खत्म। अब जो भी ज्ञान है, जो हो सकता है, जो था, जो है, सब का मूल कारण वही है, सर ज्ञान। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, बोलते सभी के हृदय में बैठा हूं। नहीं बैठा सबके हृदय में, अब काहे को बैठे सबके हृदय में? क्या कर रहे मेरे में कर रहा हूं? दो काम तो मैं कर रहा हूं, क्या दो काम कर रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त है मेरे द्वारा स्मृति अविस्मृति, स्मृति ज्ञान अपोहनम च, स्मरण दिलाता हूं कैसे काम करेगा यह भी बतलाता हूं और भुला भी देता हूं। बता बैठ के यही करते हैं, बोले मैं ही करता हूं अंदर बैठ के, तुझे पता नहीं चलता। हम इस जन्म में इस शरीर में ये करने के लिए प्रयास किए हैं, हाँ रगड़ के हरे कृष्ण करेंगे बिल्कुल सिद्ध बन जाएंगे, हाँ बिल्कुल भगवत प्रेम प्राप्ति कर लेंगे, वो करते करते कहां से रास्ता में गया, शरीर छूट गया, अब पता नहीं पंचत्व प्राप्ति कर लिया लेकिन कहीं जला दिए फेंक दिए खत्म, उसके बाद में हमारा किस शरीर में जाएंगे क्या होगा, भूल जाएंगे सारे, भूल जाते हैं। और काल का आज के याद में शरीर छूट जाएगा तो भूलेंगे, सब भूल जाते हैं। अब पता नहीं हम किधर गए थे, किधर के क्या चाहते थे करने के लिए, सब भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु इतने कृपालु है वो कोई भी शरीर में फिर याद दिला देते। बोले तू ये करना चाहता था, मैं तो तेरे साथ हूं ना, तू भूल गया, भूलकर मैं याद तो याद दिला देंगे। भगवान मुझे भूलना चाहते हैं भूलो, मुझे मिलना चाहते हैं मिलो, सारे स्मृति वही देते हैं। अगर स्मृति नहीं देते तो हमारा हाँ। किस चीज को याद करना चाहिए, किस चीज को भूल जाना चाहिए, सारे वो करवाते हैं, स्मृति अपोहनम वो कंट्रोल करते हैं। इतना नहीं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वे, अभी संपूर्ण जगत में जितने वैदिक वेद वेदांत किताब आदि है जिसमें ज्ञान है, हम बोले हम सब पढ़ेंगे, पढ़ते ही रहते हैं स्टूडियस, आप भी जेनियस है, इतने पढ़ते गए पढ़ते गए, पढ़ करके कच्चू जानेगा इसको जानो। वेदेश सर्वे अहम एवं वेद्य हो, समस्त वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल मैं ही जानने योग्य हूं। जा अब इसी को जान लिया फिर वेद पढ़ने का मतलब क्या रहा? सब हो गया, हम एक वेद्य हो। बोले सारे वेद में केवल आपको ही सब्जेक्ट, ना मैं ही सब्जेक्ट हूं, ऑब्जेक्ट में ही हूं, मुझे जानना होता। तो फिर इतने सारे वैदिक ज्ञान, वैदिक सर्व हम, बोले वैदिक ज्ञान कौन बनाया? तेरा बाप वेदांत कृत में ही बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, और क्या कोई है मेरे लिए बनाया, मुझे जानने के लिए मैं ही बनाया, वेदांत कृत वेद को करने वाला भी मैं हूं। वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो वेदांत कृत, और बोले वेद को कोई कोई जानने वाले, पूरा पूरा वेद कोई पढ़ करके जानने वाले, वही मैं हूं वेदविद। अच्छा अहम ये सारे मैं ही तो हूं, अब जब मैं सारे मैं ही हूं, मैं ही जो बोलता हूं उसको नहीं सुनता तुम्हें, मैं बोलता हूं मैं इसे कराता हूं करने वाला हूं, मैं आधखेण प्रकृति सुयते सचरा आचरण, मैं ही करा रहा हूं। तो इसी को गजेंद्र याद करके बोलते हैं, प्रभु आप तो स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप से समस्त जगत के कारण आप ही है, इंद्रियों के कारण आप है, सुख के दुख के संगठन के समस्त प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रिया सब के मूल कारण आप है, तो ये जगत कहा के बनाया आपने डाला। बोले हो आप ही जानते कि बिना हम बुद्धि नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो जरूर है ये जितना सारे जीव है वो खूब लगे पड़े हैं सुख के लिए, इंद्रियों को द्वारा इस जगत को दोहन करके सुख भोग करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं इसी द्वारा सुख नहीं मिलेगा, ये तो छाया है, छाया है ना, नहीं काया तो और कहीं है, ये जगत तो छाया। भगवान मूल में कहते हैं तेजो वारी मुदा यथा विनिमयो यत्र त्रिशद्रोंशाः। कभी कभी हम देखते हैं गर्मी के समय में दूर से दिखता है बिल्कुल ब्लू कलर के पानी बिल्कुल तरंगायित हो रहा, अरे वो पानी नहीं है तो आग है, सूर्य के किरण के द्वारा ऐसे मरीचिका देखो, मरीचिका देखे पड़ता ना इसे, हाँ वो अग्नि के धर्म को जल धर्म परिणत हो जाता है, विपरीत धर्म विनिमय, और उसको देखकर हम फंसे दौड़ते जाते, दौड़ते दौड़ते कभी पास होता ही नहीं, मर जाएंगे तब भी नहीं पकड़ में आएगा, यही होता। तो इसी प्रकार लेकिन फिर भी जगत को हम बड़े बड़े सत्य मानते हैं, बोले हाँ जगत सत्य है, क्यों सर तो छाया है, लेकिन छाया का तो कोई अस्तित्व होता है ना, छाया बिना काया के हो सकता है, बिना काया ना हो छाया हो सकता, बोलते फिर सत्य कैसे, बोलते काया तो है सत्य, तो सत्य एक है तभी तो काया है तब तो छाया है, आप इस जगत के मूल वास्तविक कारण है, आप परम सत्य है, सत्यस्य जोनी निहितं च सत्य, आप सत्य के जोनी हो, इसलिए इस जगत संपूर्ण छाया मिथ्या होने पर भी उसके कारण जेहेतु आप है तो इसलिए सत्यवत प्रतिभात होता है, क्योंकि आप है इसलिए सत्य रहता है। जो भी कुछ सुंदर वस्तु हम देखते हैं, जो कुछ भोग्य पदार्थ हम देखते हैं, ये संपूर्ण विचित्रता भले आपको देखने में लगता है कि छाया है कुछ नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी सत्य लगता है, क्योंकि उसके पीछे आपका हाथ है, आपके अस्तित्व के कारण इस झूठ भी सच की तरह दिखता है, क्योंकि आप है, क्योंकि अब सत्य से जोनी आप पर टिका हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि बोलते फिर माया क्या है, बोलते हैं कि कोई वस्तु दिखता है सच जैसा लेकिन मेरे से संबंध ना हो उसको जानो मेरा माया है, उसको मेरा माया जानो। रीति अर्थ जत प्रतीयत न प्रतीयत च आत्मनि तद विद्यात आत्मनो मायाम जथा भासो जथात्मः। बोले इसी को मेरा माया करके जानो, उदाहरण के क्या देते हैं, जथा आभास जथात्मः, अंधकार में छाया जैसा दिखाई पड़ जाता है, ये अंधकार का जो प्रेजेंस वो किस लिए होता है, अंधकार है क्या, एब्सेंस ऑफ लाइट, आलोक के अनुपस्थिति अंधा, अंधार का कुछ अपना परिचय है, अंधार का अपना आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, क्या है, आलोक की अनुपस्थिति है। अब एक बात ध्यान से आप सोचिए, एक घर के अंदर बंद था कमरा, सैकड़ों साल से अंधार पड़ा है, अंधार डार्क रूम है, आप उसके अंदर प्रवेश किए और बत्ती लगाए, एक सेकंड में अंधार कहीं चला गया ना, पूरा घर भर इतने बड़ा गोडाउन भरा अंधकार एक सेकंड में खत्म है ना, नहीं ये अंधकार को भगाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ा ना, नहीं आलोक लाने के लिए प्रयास करना पड़ा ना, मैं लाइट लाने के लिए प्रयास तो करना पड़ा ना, फिर अंधकार को लाने के लिए प्रयास करना पड़ता, कभी कभी प्रयास करते हैं अंधकार को लाने के लिए, नहीं अंधकार को लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आता है, लेकिन अंधकार को भगाने के लिए करना पड़ता है प्रयास। तो इसीलिए इसी समझ आना चाहिए कि हम तो अंधकार भरे हैं, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, तो अपना भय, तो हम करना क्या चाहिए, केवल लाइट के प्रयास करना चाहिए। और लाइट क्या है? ज्ञान अंजन सलाकया, ज्ञान रूपी आलोक, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, वो बत्ती स्विच ऑन कर लगाना चाहिए, नहीं तो अंधकार के लिए, वो तो ऑलरेडी है, वो तो होता है, उसके लिए नो प्रयास, वो भर जाता है अपने आप आकर के, उसके लिए कोई प्रयास नहीं, समझा के नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको मिटाने के लिए प्रयास करना पड़ता, बत्ती लाने के लिए प्रयास करना पड़ता। तो इसलिए हमारा पूरे जीवन की उद्देश्य प्रयास साधन रहना चाहिए इस ज्ञान रूपी अंजन को प्राप्त करने के लिए। सलाह क्या, जो लाइट इस ज्ञान रूपी लाइट को प्रयास करके लाना पड़ता है, अंधकार को प्रयास नहीं करना हो तो अपना भी हट जाएगा, अपने आप भी, जैसे अपने आप आता है ऐसे अपने आप जाएगा, उसके लिए हमको कुछ टेंशन नहीं है। अंधकार का तुलना किसके साथ दिया गया? अज्ञान के साथ। अज्ञान अंतिमिरांधस्य अंधतिमिर है अज्ञान। वो अज्ञान को लाने के लिए, भगाने के लिए हम लोग को कोई चिंता नहीं करना चाहिए, वो जैसे आया अपने आप अपना पैसे जाएगा। परिमाण कितने बड़े परिमाण क्यों ना हो, कितने पुराने अज्ञान क्यों ना हो, कितने पुराने हाई टेंशन अंधकार क्यों ना हो, एक बत्ती ऑन करने से सेकंड में जाएगा। तो इसलिए ले दे करके केवल हमको करना चाहिए आलोक लाने की प्रयास, केवल ऊर्जा के लिए हम प्रयास करना चाहिए, इसी के लिए प्रयास करो, बाकी अज्ञान चाहे करोड़ों साल से भग जाएगा। आप ज्ञान को प्रयास नहीं करे तो अज्ञान को लाना भी नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक अज्ञान आ जाता है भरे, ऑटोमेटिक है ना। तो इसलिए हमेशा उस प्रयास करना चाहिए ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञान आलोक। इसी के लिए भगवान ने साधु संत शास्त्र सबके द्वारा गीता भागवत आदि से इस प्रकार जो अध्यात्म के ज्ञान है, इस ज्ञान के द्वारा कई करोड़ जन्म के अंधकार को भगाने के लिए इस प्रकार देते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस जीवन में, इस दुनिया में इतने मोह, इतने अंधकार छाया में भरे पड़े हैं। ये जब वो जो छाया है और अंधकार है, दोनों आभास और तम, ये दोनों एक सेकंड में लाइट आने से चला जाएंगे, है ना। लेकिन ये भी समझो, लाइट होने से ही छाया होता है, लाइट होने से ही अंधकार भी होता है, वो जाते ही लाइट से, मूल है लाइट। तो इसीलिए ये कहते हैं कि हे प्रभु, आप सबके नियामक, आपके सबके दृष्टा, आप सबके संदेह मोचनकारी है, आपके सबके मूल कारण है, तो आपको मैं क्या कर सकता हूं, अभी मर रहा हूं, आपको मैं जुहार प्रणाम भर कर सकता हूं, अभी मर रहा हूं, प्लीज, अब मरने से पहले प्रणाम भर कर लेता हूं, अभी तो हजारों हजारों साल बिता दिया लड़ाई झगड़ा करके आपने बलबूते पर, अभी तो कुछ नहीं रहा, केवल हाथ भी नहीं जोड़ पाता, पकड़ा हुआ है पैर, अब थोड़ी उठा करके, नाक उठा करके ते नमः इतना ही कर, लेकिन केवल इतना, अब कुछ नहीं कर पाया, सारे उनके जो शक्ति था, सामर्थ्य था, सब तो लड़ाई झगड़ा में लगा दिया, अभी कुछ भी नहीं रहा, चार चार मोटे मोटे पैर वो भी नहीं उठा पा रहा है, पानी में डूब के मर रहा है, आपने नाक थोड़ी उठा करके केवल इतना बोल दिया हाथी भाषा में, कोई सही भाषा उच्चारण थोड़ी कर पाएगा, आपने हाथी बोली में ते नमः अपने गुण की याद करके इतने कर दिया। बड़े बड़े देवता ब्रह्मा सिद्ध दबाकर खड़े होते हैं, वो सब इतनी बड़ी बड़ी बात का हमारी बात करता है क्या, बोलते भीड़ लगे थे सारे आकर के, लेकिन कोई हेल्प नहीं कर रहे थे, भगवान दौड़ कर बोले मरी जाएगा, आप देख रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, दौड़ के आके मदद किए, उसको कुछ नहीं कर पाया था बेचारा, मरते मरते पानी के अंदर डूब करके, उसी कितने समय होगा, मर जाते सब खींच खींच के ले जाएगा, थोड़ी समय के अंदर थोड़ी उठा करके ते नमः करके कुछ श्लोक बोल करके प्रणाम भर कर लिया, इतने भगवान वैकुंठ से छोड़ करके इतने वेग से दौड़ कर आकर के उनको उद्धार कर डाले। जब ऐसी स्थिति में भगवान आकर उद्धार कर लेते हैं, आप मंदिर में आ करके खड़े होकर के हाथ उठाकर नाच करेंगे, उनके नाम जप करके तुलसी दला दे करके माला पहन के तो करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे जब पानी में मरते समय हाथी भी कर लिया अपनी भाषा से, आप लाभ क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा, ऐसे विश्वास करना चाहिए। विश्वास मिलाई वस्तु तर्क बहुत, इस प्रकार विश्वास करो तो अवश्य ही हो जाएगा, और क्यों कैसे हो जाएगा तर्क करो, नहीं होगा, नहीं होगा। जहां डाउट किया तहां खत्म संशय, तो भगवान को याद करो सारे संशय खत्म, विश्वास का मान लिया खत्म, कोई संशय नहीं है, हो गया उनका काम। और जो थोड़ा बुद्धि लगाया संशय आया, अब फिर काम नहीं बनेगा। तो इसलिए सारे हमारे बुद्धि सारे हमारे तथाकथित समझ को एक किनारे में साइड में रख दो कचड़े पट्टी में, और सीधा भगवान को विश्वास करो, बस काम बन करके रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, very nice class, Maharaj. Thank you very much. So, in this narration of the deliverance of Gajendra, you probably recall there is one long purport by Srila Prabhupada that is very, very important.
तो महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर प्रवचन लिया। तो इसमें जो गजेंद्र मोक्षी कथा है, इसमें एक प्रभुपाद जी का एक बहुत ही विस्तार रूप में एक तात्पर्य है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं।
श्री प्रभुपाद पॉइंट्स आउट दैट द गजेंद्र ही वाज नॉट इन हिज एलिमेंट बिकॉज़ ही वाज नॉट वाटर एनिमल, ही पॉइंट्स आउट।
तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं उस तात्पर्य में कि गजेंद्र जो है वो वास्तव रूप में निसहाय थे, क्योंकि वो पानी के अंदर थे, जबकि वो पानी के पशु नहीं है।
But the crocodile, he was water animal, so he was strong because he was in the right place for his nature.
और जो घड़ियाल था वो ज्यादा शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि वो पानी के पशु होने के नाते पानी में था।
So then Prabhupada is using this example, land animal, water animal. We have to render service, we have to render devotional service according to our nature. This is how Prabhupada is giving purport to land animal, water animal. So the crocodile was stronger because he was in his element. It was the right element for him.
So Prabhupada ji iski tulna kar rahe hain, janwar jo ek pani ka pashu hai aur ek zameen ka pashu hai, iski tulna kar rahe hain. कि एक भक्त को भी भगवान की भक्ति उसी चीज में करनी चाहिए जिस जो उसका स्वभाव है, जैसा उसका स्वभाव है वैसे उसकी भगवान की सेवा करनी चाहिए।
Then Srila Prabhupada points out that so if you are serving according to your nature in the right environment that works for you, then you can be strong. Only then you can be strong.
तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई भक्त अपने स्वभाव के हिसाब से सही माहौल में अपनी इच्छा अनुसार भगवान की सेवा करता है तो उसका उसको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है, वो सुरक्षित महसूस करता है।
Then actually Srila Prabhupada is begging in that purport. He is begging.
और उस पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी सबसे एक तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं।
So you try to render service according to that situation that will give you a spiritual strength. You try to render service whatever then he's getting straight to the point. He says, what your ashram, for example, doesn't matter for somebody. Sannyasa ashram is the right way of life, and for somebody else, grihastha is the right way of life. It doesn't matter, but you have to be in your element to have the strength. This is Prabhupada's, how he's getting that out of this land animal, water animal. You have to be in your element. Maybe grihastha, maybe sannyasi.
तो प्रभुपाद जी ये चीज समझा रहे हैं, इससे तुलना करें आश्रम की, चाहे आश्रम कोई भी क्यों ना हो, चाहे कोई गृहस्थ आश्रम में हो, चाहे सन्यास आश्रम में हो, जिस आश्रम में भी वो आराम से भगवान की भक्ति कर सकता है, सेवा कर सकता है, उसमें उस आश्रम में स्थित रहकर करनी चाहिए, उसको फिर से आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी।
Now it's significant. So Srila Prabhupada is writing this purport around about the same time that a sannyasi had just fallen down.
तो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य को करीबन उसी समय में लिख रहे हैं जिस समय में एक सन्यासी का जो है उस समय पतन हो गया था।
So his point that Prabhupada is making is, so even you have to change your ashram, that is all right.
So उस तरीके से दृष्टिकोण से अगर किसी भक्त को अपना आश्रम को बदलना भी पड़े लेकिन अगर उस आश्रम में जिसमें वो आराम से भगवान की भक्ति सेवा कर सकता है तो उसको कर लेना चाहिए.
But then he makes an astonishing personal appeal.
और उसके बाद ही वो एक विचित्र जो है वो एक निजी सब लोगों से एक प्रार्थना कर रहे हैं.
He says, "But please don't go away."
और ये प्रार्थना कर रहे हैं कृपा करके आप कुछ भी हो लेकिन आप कृष्ण भक्ति से दूर मत जाइए.
I suspect that he was crying when he wrote that purport. That the vibration is like, I suspect he was crying out of compassion that when he wrote that purport.
और ये मेरा ऐसा मानना है जब मैंने तात्पर्य पढ़ा सब ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रभुपाद जी इसको लिख रहे थे तो निश्चित रूप से करुणा के कारण वो रो रहे होंगे.
Okay, thank you.
मैं ये चीज कहना चाहता था. धन्यवाद.
जय श्री प्रभुपाद की. ग्रंथ का श्रीमद् भागवत महापुराण की जय.